إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है. सूरत बकरा की आयत नंबर 222 है ये. इसकी रोशनी में आज हम दुआ की एक अछूती किस्म तौबा को देखेंगे. हमारे जहनों में जब तौबा का लफ्ज़ आता है तो कुछ दुआएं भी साथ ही आने लगती हैं. रब इग़फ़िरली, रब्बना इग़फ़िर लना, या इसी तरह से रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना. तो हकीकत यह है कि जो इंसान दुआएं मांगता है, सबसे ज़्यादा जो दुआ उसको मांगनी चाहिए वो तौबा की है. क्यों? इसलिए कि हमारी बहुत सारी मांगी हुई दुआएं रास्ते में रोक ली जाती हैं हमारे गुनाहों की वजह से. हम जब तौबा करते हैं दिल की गहराई से, एहसास रखते हुए, ज़ुबान से नदामत के मारे हुए कुछ अल्फाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है. वो हमारे उस गुनाह को माफ़ फरमाता है. जूँ ही गुनाह माफ़ होता है, हमारी वो दूसरी दुआएं भी कबूल होने लगती हैं. एक वाक्य से इंशाल्लाह आपकी मदद करना चाहूँगी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक्य आता है कि बारिश ना हो रही थी, कहत साली थी. हर दौर में ऐसे हुआ कि जब इज्तमाई तौर पर कोई भी मसला आता है तो उसके लिए फिर इज्तमाई दुआ की ज़रूरत होती है. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर खुले मैदान में चले गए कि चलो जाके दुआ मांगते हैं बारिश के लिए, अल्लाह ताला बारिश देगा. आज के दौर में इसको एक ख़ास तरीके से किया जाता है जिसको सलातुल इस्तस्का कहते हैं, बारिश के लिए दुआ मांगना. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए, सबके साथ मिल के आपने दुआ की कि अल्लाह ताला बारिश हो जाए, तो वही के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि बारिश नहीं हो सकती, बावजूद इसके कि सभी मांग रहे हैं. पूछा क्यों? कहा कि इस महफिल में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है कि जो बहुत गुनाहगार है, और उस एक के गुनाह की वजह से सबकी दुआओं को रद्द कर दिया जाएगा. और ये मफहूम हमें दूसरी हदीस से भी मिलता है. हमने रिसेंटली अपने कुरान के सबक में सूरह रोम में भी पढ़ा कि इंसान के गुनाहों की वजह से इंसान ही तो क्या, जानवर भी नुकसान उठाते हैं. ज़हरुल फसादा बलियाज जो थी कि फसाद फैल जाता है, फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदी नास. किस्सा मुख्तसर के अल्लाह ताला ने ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाम बताया, हज़रत मूसा ने भी यही बात आगे कर दी कि भाई हम में से कोई एक ऐसा गुनाहगार है जिसकी वजह से दूसरों की दुआएं भी कबूल नहीं हो रही. अब सभी गुनाह करते हैं, लेकिन उसका गुनाह यकीनन कोई ऐसा होगा. और हर बंदे को अपने गुनाह का खूब पता होता है. सूरत क़यामत में अल्लाह ताला फरमाते हैं बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान खुद अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है. वलौ अल्का माज़ीरा, चाहे लोगों के सामने बड़े उज़र पेश करे, माजरतें पेश करे. उस शख्स के दिल को लग गई, कहने लगा मैं इतना बदबخت हूँ कि मेरी वजह से सभी नेमत से महरूम हो गए. उसने वहीं बैठे बैठे चुपके चुपके अस्तगफार की, दुआ मांगी कि अल्लाह तू मुझे आज माफ़ कर दे, मैं आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा. ये उसकी रब के साथ खुद कलामियाँ हो रही थी कि इतने में छन 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 बारिश शुरू हो गई. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछते हैं कि अभी तो आपने फरमाया कि बारिश नहीं होगी, कि फलां गुनाहगार बैठा है और अब बारिश होने लग गई, तो ये क्या बात है? कहा हाँ मूसा, तुम्हें नहीं पता, उसने यहाँ बैठे बैठे तौबा की और मैंने उसका वो गुनाह माफ़ किया. जब गुनाह माफ़ तो उज़र दूर, तो दुआएं कबूल. मैं सोचती हूँ सिर्फ इस एक मज़मून को अगर आम कर देना, यानी आज की ऑडियो 10-5-15 मिनट की जो भी है, सिर्फ इसको हम आम कर देना, गली गली कोना कोना लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दें कि तुम जितनी मुश्किलात का शिकार हो, जो तुम्हें गम है, डिप्रेशन है, दुख है, बीमारियाँ, और जो दुनिया के इज्तमाही हालात हैं या इनफरादी हालात हैं, इसमें बहुत बड़ी वजह तुम्हारे गुनाह है. तो लिहाजा दुआएँ मांगने से पहले पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगिए. हज़रत आदम और हव्वा का किस्सा इसके लिए बेमिसल है. जन्नत में थे, फल खा लिया, नाफरमानी हो गई, टेम्प्टेड हो गए. शैतान ने इस तरह लंबी उम्र और हमेशा की ज़िंदगी की तमन्ना दिलाई कि अल्लाह का हुक्म भूल गया, और ऐसे लगा कि जन्नत का सारी लज्जत ही जन्नत की उस एक दरख्त के फल के चखने में. शैतान की हमेशा से यही आदत रही कि वो इस तरीके से लोगों को गुनाह की रग़बत दिलाता है कि सारी लज्जत ही इस गुनाह के काम में है. अब जब वक्ती तौर पे बहके और जब होश आया, अल्लाह ताला ने कह दिया कि निकल जाए इस जन्नत से, इखबितु मिनहा जमीया, सारे ही निकल जाओ. फिर आदम को जो आवाज़, जो बात समझ आई, क्या थी? क्या कहा? अल्लाह जन्नत में भेज, क्या कहा अल्लाह ताला ये, फिर ऐसा नहीं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो तौबा का दुआ के साथ गहरा ताल्लुक है। हम सबको दुआएं मांगने से पहले तौबा की दुआएं मांगने की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारी नेमतें आसमानों ज़मीन के बीच में लटकी होती हैं, हुक्म आ चुका कि मिल जाए ये नेमत, लेकिन हमारे गुनाह एक ऐसी बैरियर और एक ऐसी रुकावट बने होते हैं कि जो हमारे तक उस चीज़ को पहुँचने ही नहीं देते। वमा कसबत अईदीकुम वली कैफियत वमा असाबकुम मिन मुसीबतिम बिमा कसबत अईदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे अपने गुनाहों का किया दरा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुँचे तो क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला कहते हैं अगर यूनुस ये कलमा ना कहते तो क़्यामत तक मछली के पेट में रहते, आज भी वहीं होते, उनकी कब्र बन जाती, वही उनका बरज़ख़ का मुकाम बन जाती। तो उनको ये शऊर किसने दिया कि मैं जिस मुश्किल में फंसा हूँ, ये तो नहीं कहा अल्लाह मुझे मछली के पेट में से निकाल। हम आज लफाजी पे गौर करते हैं, हमारे उर्दू कल्चर में तो जब तक आगे पीछे दो चार शेर पढ़ के कोई दो चार बातें कर करा के खूब राग लगा के दुआ ना मंगवाई जाए लोगों को तसल्ली नहीं होती। अरबी की मांगी हुई दुआएं तो लोगों को अरबी की लगती नहीं है, लेकिन दुआ की जो असल रूह है वो गुनाहों से माफ़ी है, तौबा। अल्लाह के नबी की एक बहुत प्यारी रिवायत है सही मुस्लिम में कि एक शख्स जो अपने सामान के साथ किसी सहरा में सफ़र कर रहा था, थक गया सो गया, जब उठा तो देखा कि ऊँटनी साजो सामान के साथ गायब है। अब भूख और प्यास उसको तो अपनी आंखों के सामने मौत दिख रही थी, क्योंकि सहराओं में ना तो कोई मोटल्स होते हैं ना होटल्स होते हैं, और कोई ना मिले तो भूख से ही इंसान मर जाएगा। इतने में चलते चलते ढूंढते ढूंढते थक हार के जब दोबारा पलटा सो गया, फिर नींद से बेहाल हुआ, और जब उठा तो दोबारा देखा तो वही ऊँटनी सामने मौजूद थी। अनएक्सपेक्टेडली वो ऊँटनी खुद ब खुद पलट के उसके पास आ गई। इतना खुश हुआ कि कहने लगा कि मेरे रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। सरासर शिर्क वाला जुमला, बल्कि कुफर वाला जुमला, लेकिन अल्लाह को बताया कि उसने जज्बात की शिद्दत से मगलूब होकर ये कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितनी खुशी इस शख्स को अपनी ऊँटनी के पलट कर आने पर हुई, इससे ज़्यादा खुशी अल्लाह को उस बंदे की तौबा पर होती है जो गुनाहों से तायब हो जाए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम गुनाह करके और अपनी बुरी आदत ना छोड़कर अल्लाह ताला को इस खुशी से दूर रखते हैं। माँ को भी खुशी होती है जब सारे दिन का भूला हुआ बच्चा रात को वापस आ जाता है, वो भी सीने से लगाती है, वो भी दरवाज़ा खोल के रखती है। इसी तरह अल्लाह ताला सारे दिन के गुनाहगारों को रात के तीसरे पहर आसमान दुनिया पे आके पुकारता है, हल मिम मुस्तगफिर, कोई है गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला, आए बख्शिश मांगे। हदीस में आता है कि रात के वक्त अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाते हैं ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, फिर दिन के वक्त अल्लाह अपना हाथ फैलाते हैं कि गुनाह करने वाला तौबा कर ले। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, और पहली रिवायत जो ऊँटनी वाली थी वो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत थी। दिन में तौबा करना क्या है कि इंसान नेकियों की तरफ पलटे। आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई नेकी का चांस आता है, कोई खुशी का मौका, कोई अपने गुनाहों को बख्शवाने का मौका, हम उस वक्त ये कभी नहीं सोचते कि यह रब का फैला हुआ हाथ है। हमें नेकी के किसी काम की दावत मिलती है। मैंने कल किसी को दावत दी कि हमारे पास रोमन में एक क्लास शुरू हो रही है आज, तो आप आइएगा, प्रोग्राम हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरी बात सुनी की, लेकिन फिर बाद में उनका जो टोन था कहने लगी मैं आपसे वादा नहीं करती, मैं कोशिश करूंगी। यानी जो चीज़ मुझे फील हुई बात के बाद वो ये हुई कि उन्होंने ये सोचा कि सरासर ये मेरा काम है कि वो आए, वो मुझसे, जैसे मेरे घर में दावत और कोई ना आए तो मुझसे माजरत पेश करे। मैं बहुत सोचती रही कि उन्होंने इस दावत को अपने लिए क्यों नहीं सोचा, उनकी आवाज़ में ये सोच क्यों नहीं मिला कि हाय सच्ची, हाय मैं मिस कर दूंगी, हाय मैंने कहीं जाना है, कहीं पहले से जाना है। उन्होंने मेरे सर पे क्यों एहसान रखा कि हाँ नहीं आप माइंड ना करिएगा, मैं वादा नहीं करती, कोशिश करूँगी। और बिल्कुल टोन वही थी कि सरासर मेरी दावत है, ये खाने पे बुलाए कोई या किसी को कुरान पे बुलाए। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि अल्लाह ताला हमारी तरफ हाथ कैसे फैलाता है, हमें नेकियों के मौके देकर। और कितने सखी फिरते हैं, कितने हम कह लें कि अपने आप को मैं क्या कहूँ, लफ्ज़ बड़ा बुरा मुंह में आ रहा है, कि हमें कोई परवाह ही नहीं, इतने सखी इतने दौलतमंद हो गए कि हमें और नेकियों की ज़रूरत ही नहीं, दौलत की ज़रूरत ही नहीं। अब देखिए कि एक शख्स मसरूफ़ हो, आप ही अपने आप को लें, आप बहुत काम में मसरूफ़ हैं, आपकी मेड आती है और कहती है कि बाजी वो बाहर माली आया है, ज़रा उसकी बात सुन लें, तो आप क्या कहेंगे आगे से? कह दो मैं मसरूफ़ हूँ, बिज़ी हूँ, आप ही काम में लग जाएंगी। लेकिन आप बैठी काम कर रही हैं और आपकी मेड आपको आके कहती हैं कि बाहर इस शहर के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ आई है, क्या कहेंगी? कह दो मैं मसरूफ़ हूँ, मेरा ख्याल है हाथ पांव बट जाएंगे। हम कैसे मसरूफ़ हैं? हमने कभी अल्लाह की तरफ से आई हुई पुकार को सुना भी नहीं। नो थैंक्स कह के इस तरह रिजेक्ट करते हैं जैसे चाय और जूस की कोई ऑफर को रिजेक्ट करता है, क्योंकि एहसास नहीं है कि ये हमारे लिए हो रहा है, ये हमारे लिए। आप देखिए कि जिस बंदे की तौबा का अल्लाह इंतज़ार कर रहा है, उस बंदे की खुश नसीबी के क्या ठिकाने। इंशाल्लाह आज दर्स है, आप लोग आ सके तो ज़रूर आइए। ऐसे मौके जो होते हैं, ये हम सब के अपने ईमान के रिवाइवल के 15 इंशाल्लाह मिसालें दूंगी कि क्या हम इस कुरान की दावत या कुरान के पैगाम के जवाब में लोगों को देते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन कोई बंदा ये ना सोचे कि हम आ चुके हैं। तौबा का मानी कहते पलटना, जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, आए बून ताए बून, यानी औब से नौब से तौब से, ये इस तरह घूमता है। बंदा दिन भर में गुनाह करता है, फिर रात को अल्लाह की तरफ आता है, फिर रात को कोई गुनाह होता है, फिर अल्लाह की तरफ आता है। अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूँ, तुम भी किया करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत का खुलासा है। और जिसको देने के लिए उसका मालिक दरवाजे पे आ जाए, फिर वो ना मांगे, वो ना गुनाहों से तौबा मांगे। तो लिहाजा इस वक्त हम तौबा को दुआओं के तनाजुर में करें, वरना इस पे एक पूरा टॉपिक मौजूद है, ऑनलाइन पे भी कहीं होगा, कि गुनाह कैसे हमारे से नेमतों को दूर करते हैं। तकरीबन 23 पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, गुनाहों के असरात क्या क्या इंसान के ऊपर आते हैं। उसमें पहला ही असर यह है कि इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। इमाम इब्ने कय्यिम की एक छोटी सी बुक मैंने एक जगह पढ़ाई थी कि गुनाहों के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ सेंस, कि क्या असरात होते हैं गुनाहों के। पहला ही पढ़ते हुए मेरा दिल हिल गया था कि गुनाह की वजह से बंदे के दिल से इल्म का शौक मिट जाता है, इल्म दिल ही नहीं करता हासिल करने को। ऐसा लगता है काफ़ी नेक है हम, माशाल्लाह खूब अच्छी दौलत है बैंक में, काफ़ी रखी हुई है नेकियाँ, जब ज़रूरत होगी डिपॉज़िट करा लेंगे, और ज़रूरी तो नहीं ऐसे और वहाँ हो। याद रखिए कि दीन इस्लाम के बहुत सारे अमल हैं, लेकिन तौबा एक ऐसा अमल है जिसके लिए एक टाइम लिमिट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि वो नज़ा की हालत में मुब्तला नहीं होता। मालम यो गरगर गरगरा, ये जो मौत की हिचकियाँ होती हैं ना, मरने वाले के पास बैठ के सुना करें, सारी ज़िंदगी की आह होती है, आह किधर गए, जान हंसली में फटकी होती है। कल्ला इज़ा बलगतिल तराकिश, सूरत क़यामत में अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त तक अल्लाह ने तौबा को रोका हुआ है, उसके बाद कबूल नहीं होगी जब निज़ा के मामले शुरू हो जाए। ये तिर्मिज़ी की रिवायत का खुलासा है कि मौत से पहले का एक ख़ास वक्त होता है जिससे बाद में फिर तौबा कबूल नहीं होती, वरना तो फिरौन की भी कबूल हो जाती। उसने भी ईमान की बात की थी, उसको भी पता चला था कि अब मेरा वक्त आ गया, तो कहा मन तो बे रब्बी मूसा व हारून। फिर आप देखिए कि तौबा को कुरान पाक में तौबतुन नसुखा भी कहा गया। नसखा कहते हैं फटे हुए कपड़े को सीना, पैबंद लगाते हैं ना, पैचिंग, पैच वर्क बहुत मारूफ है आज के दौर में, पैचिंग को नसुख कहते हैं, नसखा। तौबा क्या है? गुनाहों की वजह से नफ्स पर जो धब्बे पड़ गए ना, धजियाँ उड़ गई, इमेजिनेशन में लाएं कि कहीं एकदम आग लगे तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा जल जाता है बीच में, कभी चूल्हा साफ़ करने वाला कपड़ा जल जाता है, कभी डस्टर जल गया, कभी आपका अपना दुपट्टा जल गया। अब आप खोल के देखते, कहते हाय यहाँ से भी एक इसका टुकड़ा ख़त्म हो गया इधर से, फिर आप उसी तरह का एक और कपड़ा ले के उसको जोड़ के फिर सुई से ऐसे जोड़ते हैं कि पता ना चले जुड़ा हुआ है। ये है तौबा। हर गुनाह बंदे के नफ्स के ऊपर एक स्याह धब्बा छोड़ता है, हदीस का खुलासा है, और उन धब्बों को, उन फटे हुए हिस्सों को सीने का नाम तौबतुन नसूख है। उबई बिन काब से किसी ने पूछा कि तौबतुन नसूखा क्या होती है, खालिस तौबा क्या होती है, तो कहने लगे कि मैंने भी यही सवाल अल्लाह के नबी से पूछा था, تو آپ نے فرمایا کہ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ. دیکھیں شرمندگی نہیں ہوتی نا تو ہم مانتے ہی نہیں ہم گناہ گار ہیں. آج تو مسئلہ ہی ہے، ہم کوئی شرمندہ نہیں اپنے گناہوں پہ، ہم تو ان کو لیگلائز کرتے ہیں، ہم تو جنرلائز کرتے ہیں، ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں گناہوں کو کہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، یہاں نہیں ہو سکتا، ان حالات میں نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے ندم التوبہ، دو لفظوں کی حدیث ہے، آپ بھی یاد کر لیں، ان ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، شرمندگی ہی ہے تو بندہ سر نہیں اٹھا سکتا، اور جس کے اندر شرمندگی نہیں وہ اگلا کام کہاں کرے گا. تو فرمایا کہ نادم ہو جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ کبھی اس گناہ کو کرنے کا ارادہ نہ کرو. یہ ہے توبہ النصوحہ. تین عمومی شرطیں ہوتی ہیں توبہ کی، شرمندگی، معافی اور اجتناب کی تمنا. آپ دیکھیں ایک کا تعلق ماضی سے ہے، شرمندہ کس میں ہے؟ جو زندگی پیچھے گزار دی، زندگی بے بندگی، شرمندگی. آپ کو اب شرمندگی ہوتی ہے قرآن سے پہلے کی زندگی پہ؟ ابھی بھی ہوگی، لیکن پہلے تو بالکل ہی اندھیرے تھے نا، کھٹا ٹوپ اندھیرے، اور کبھی اس وقت ہم سے کوئی پوچھتا تو صحیح کہ ہم کیسے ہیں. لیکن آج کوئی کہتا ہے نا تم گناہ گار ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کم پتہ ہے، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہم روح سیاہ ہیں. جتنا علم آتا ہے اتنا بندہ اپنے اندر جھانکتا ہے. یہ بالکل کین آبزرویشن والی مثال ہے. سطحی نظر سے آپ اس کمرے کو دیکھیں گے آپ کو صاف لگے گا، آپ تنقیدی نظروں سے دیکھیں گے آپ کو کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھیں گی، اور اگر آپ واقعی ایک سپروائزر کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں 50 خلل دکھیں گے. فرق دکھتا ہے. ہم اپنے نفس کو جب باہر سے دیکھتے ہیں تو موٹے ہوتے رہتے ہیں، بہت اچھے ہیں، کیا دوسروں سے اچھے نہیں ہیں لوگ؟ لوگ تو گلے میں بھی نہیں لیتے، اور لوگ تو نماز نہیں پڑھتے. شکر نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر احسان کر رہے ہو پڑھ کے. لیکن عموماً دیکھیں رویے ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو لہٰذا انسان کبھی بھی اپنے اوپر مطمئن نہ ہو کے بیٹھے، ہر وقت کوشش کرے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا. ندامت ماضی سے ہے، اس وقت آپ کیا کریں؟ معافی. یہ جب زبان سے بولتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دعا ہے اصل میں، استغفر اللہ. یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو اس کا بڑا ٹھیٹھ ترجمہ کرتی ہوتی ہوں اپنی زبان میں، اردو میں کرے آپ پنجابی میں کرے. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میرا پچھلا معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. آپ 10 دفعہ اردو میں یہ جملہ بولیں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے، کسی ایک گناہ کو یاد کر کے، اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گی، اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گی، اور ساتھ ہی وہ کام کرتی بھی جائے. اب دیکھیے کہ ایک ماسی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بڑی احتیاط سے یہ برتن دھونا، بڑی قیمتی پلیٹیں ہیں، وہ کہے گی اچھا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی احتیاط سے اٹھا رہی تھی، بڑی کانشیس بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس سے ایک پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی، اس کا رنگ اڑ گیا، وہ خوف زدہ ہو گئی، رونے لگی، باجی نہیں باجی میں نے جان کے نہیں کی. آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس کا قصور نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا چلو اٹھاؤ، دیکھو احتیاط سے، ہاتھ میں نہ چبھ جائیں. دل کو آپ تسلی دیں گے کوئی بات نہیں، مجھ سے بھی ٹوٹ سکتی تھی، میرے بچے سے بھی ٹوٹ سکتی تھی. لیکن اگر آپ جس بات پہ کہیں کہ اس کو بڑے احتیاط سے دھونا، وہ اسی پلیٹ کو پکڑے، اچھا بھائی یہ پلیٹ بڑی قیمتی ہے، اور گھڑک سے آپ کے سامنے زمین پہ دے مارے اور توڑے، اور ساتھ ہی آپ کو کہ باجی ٹوٹ گئی اب نہیں توڑوں گی، باجی ٹوٹ گئی اب نہیں توڑوں گی، پھر اسی کی دوسری پلیٹ پکڑے اور زمین پہ مارے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص گناہ بھی نہ چھوڑے اور توبہ توبہ بھی کہتا رہے، یہ توبۃ الکذابین ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے. تو دوسری بنیادی شرط ہے کہ اب آپ اس وقت معافی مانگ رہے ہیں، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کی شرط ہے آپ کی، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ جب یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ پھر مدد دے گا اور پتہ چلے گا. کوئی بعض دفعہ گناہ چھوڑتا ہے بے عزتی کے ڈر سے، کوئی مالی نقصان سے، کوئی بیماری سے چھوڑتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو اگر تم نے مزید شراب پی تو تمہیں لنگس کینسر ہو جائے گا، چھوڑ دیتا ہے. تو کیا یہ توبہ؟ یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کے اللہ کے ڈر سے. بعض دفعہ بڑھاپے میں شوق ہی نہیں رہتا، ہمت ہی نہیں رہتی ان گناہوں کی، یہ توبہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت گہرا نقطہ ہے. کچھ کام جو انسان اپنی جوانی میں کرتا ہی رہتا ہے اور آج بھی بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے، ہائے کیا دن تھے، کبھی پھر وہی ہمت وہی جوانی آ جائے تو یہ کریں گے، تو اسٹل آپ وہی کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. اگر تک توبہ نہیں کی، اگر شرمندگی نہیں کہ اللہ میں نے کیا کیا، تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں بوڑھا ہوتا، वो ताकत भी मांगते हैं तो गुनाहों की मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो बहुत सख्त वईद है, क्योंकि हदीस में आता है ना कि जो काम इंसान सेहत के दिनों में करता है, अगर बीमारी में वो नेकी का काम ना कर सके तो उसको उसी काम के करने का अजर वहाँ भी मिलता है। तो क्या इसका इत्तलाक गुनाह पे नहीं होगा? शौक की बात है ना, जो कर सके नहीं कर सके। आपका दिल चाहता है मैं गाना सुनूँ, आप कैसेट डालते हैं डालते हैं डालते हैं डालते हैं, वो काम ही नहीं करती सीडी प्लेयर या कैसेट काम नहीं करता, आप छोड़ते हैं चुपर के बैठ जाते हैं। क्या ख्याल है आपको गुनाह नहीं हुआ? आपने तो आखिरी कोशिश कर ली, अल्लाह ने नहीं आपसे सुनवाया। तो लिहाजा इंसान का दिल बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है इस चीज़ में कि हम गुनाहों के साथ कैसा मामला करते हैं। और आप देखिए कि तौबा और गुनाह को अगर आप जहन में रखें तो इच्छा अल्लाह ताला आपको फिर अल्लाह ताला से मांगना भी आ जाएगा। हम बाकायदा जब किताब शुरू करेंगे तो आप उसमें इसके कई मुख्तलिफ एंगल देखेंगे कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के साथ साथ दूसरे नेकियों को कैसे पनप सकते हैं। सारी ज़िंदगी का गुनाहगार भी अल्लाह ताला से अगर मांग के पलट आता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको देता है। बहुत मारूफ वाक्य सही बुखारी और मुस्लिम का कि 99 कत्ल किए थे एक शख्स ने और एक और कर दिया। इस पे मैंने एक पूरा दर्स दिया था, मैंने खुद बहुत इंजॉय किया था उस दर्स को देते हुए, क्योंकि ये हदीस हमने बहुत दफ़ा कोट की है लेकिन मैंने अरबिक टेक्स्ट के साथ पढ़ी तो वाकई नबी सल्लम के अल्फाज का जो एक कमाल दिखता है उसमें हमें दिखता है कि जो उसका 100वां कत्ल था ये भी असल में इसकी तौबा थी, इरिटेशन थी। मैं गुनाहों की दलदल से निकलना चाहता हूँ, तुम मुझे निकलने ही नहीं दे रहे, मैं तुम्हें भी मार देता हूँ। ये था अज़्म उसका। देखने में वो 100वां कत्ल है लेकिन वो तौबा की तरफ बढ़ता हुआ उसका पहला कदम था। अल्लाह ने उसके बावजूद उसको माफ़ कर दिया। जब मरा तो अल्लाह ने असबाब ऐसे पैदा कर दिए कि ज़मीन खिंच गई और नेकों की तरफ वो जा रहा था, वो ज़मीन जो थी ज़्यादा हो गई और गुनाहों से दूरी हो गई, अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। तो अल्लाह तो बहाने चाहता है, इसके लिए इंसान को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। एक मौके पे एक बूढ़ा शख्स था अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगे अल्लाह के रसूल सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है, कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसका इर्तकाब ना किया हो, रुए ज़मीन की सारी मखलूक में अगर मेरे गुनाह तकसीम कर दिए जाएँ तो वो सब को ले डूबे। ये एहसास क्या बोल रहा है? अन्नदमु तौबा, शर्मिंदगी है। क्या मेरी तौबा की कोई सूरत है? अल्लाह के नबी से पूछने लगा। आपने फरमाया क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए हो? कहने लगा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जा अल्लाह माफ़ करने वाला और बुराइयों को नेकियों में बदलने वाला है। उसने अर्ज़ किया क्या मेरे सारे गुनाह और जुर्म माफ़ हो जाएंगे, यानी उसको यकीन ही नहीं आया। आपने इरशाद फरमाया हाँ तेरे सारे गुनाह और जुर्म मुआफ़ हो जाएंगे। क्यों मायूस होता है इंसान? आपको पता है कि शुरू में गुनाह मुआफ़ होते हैं, जब हम पहले गुनाह करते थे और अब नहीं कर रहे शर्मिंदा है तो गुनाह मुआफ़ होते हैं, लेकिन फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब हम अब गुनाहों की जगह नेकियां कर रहे हैं ना तो अल्लाह ताला उन गुनाहों को फिर नेकियों में बदलता जाता है, यानी रिप्लेसमेंट होने लगती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कल हमारी डायरियों में गलत चीज़ें लिखी जाती थी अब उसकी जगह हम खुद कुरान लिख रहे हैं, हमारे कंप्यूटर्स में अगर ख़राब चीज़ें थी अब उसकी जगह अच्छी चीज़ें आ रही है, तो रिप्लेसमेंट है ना। अल्लाह ताला कैसे बुराइयों को भलाइयों से बदलता है? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से कभी भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुरान पाक में तौबा और इस्तग़फ़ार की बहुत सारी दुआएँ हैं। सूरह तौहा में आता है आयत नंबर 88 में व इन्नी लगफ़ारु लिमन ताबा व आमन व अमिला सालेहन सुम्मा अहतदा। जो शख्स तौबा कर ले, ईमान लाए और नेक अमल करे और सीधा चलता रहे, इसके लिए मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। फिर इसी तरह हम इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ों को इस बुक के साथ भी देखेंगे। और तौबा और दुआओं की कबूलियत में एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो हमें मिलती है वो सूरत नूह के अंदर जाके आपको समझ आएगी कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़ारा। बस हज़रत नूह ने अपनी कौम से कहा कि अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगो, वो बहुत बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा, वो तुम पर बरसने वाले बादल भेजेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिम, वो तुम्हें मालों से मदद देगा। व बनीन और बेटों से। व यजअल्लकुम जन्नातिम व यजअल्लकुम अन्हारा, वो तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा कर देगा। हसन बसरी के पास एक दफ़ा मुख्तलिफ लोग आते रहे, किसी ने कहा कि खुश्क साली बहुत है क्या करूं, इन्होंने कहा जाके इस्तगफार करो। एक आ गया कहने लगा मेरी पैदावार कम है, कहा इस्तगफार करो। किसी ने कहा बच्चे नहीं है। जो बंदा आए जा रहा है सबको यही कह रहे हैं कि इस्तगफार करो इस्तगफार करो। कोई शख्स इनके पास बैठा था, उसने हैरत का इजहार किया, कहा आपने सबको एक ही गोली दे दी, एक ही लाठी से हाँक दिया कि इस्तगफार करो। कहने के क्या तुमने ये फिर सूरत नूह की आयतें नहीं पढ़ी कि अगर तुम इस्तगफार करोगे तो अल्लाह आसमान से बरसने वाले बादल देगा, बेटे देगा, माल देगा। तो असल बात क्या है कि हमारे गुनाहों को हमारी नेकियों और दुआओं की कबूलियत में बहुत ज़्यादा एक गहरा दखल हासिल है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सच्चे दिल से तौबा करने वाला बना दे, मायूसी हमारे दिल से चली जाए। जो हुआ सो हुआ, इल्ला मा कद सलफ, कुरान का ये खूबसूरत मिजाज है। चौथे पारे के आखिर में भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, इल्ला मा कद सलफ, जहाँ मुहर्रमात का जिक्र है कि जहाँ अपनी माँ से भी लोग निकाह कर लिया करते थे सौतेली माँ से, तो वहाँ भी कहा इल्ला मा कद सलफ, जो हो गया सो हो गया। सूद के जिम्मन में अल्लाह ताला कहते हैं इल्ला मा कद सलफ, जो हो गया सो हो गया, फ़ामरहु इलल्लाह, डाल दो अल्लाह पे मामले। तो अपने गुनाह कभी दूसरों को नहीं बताने चाहिए। इस्लाम में कोई पार्डन का तसव्वुर नहीं है, कोई कफ़ारे का नहीं है। आपको तो क्रिश्चियनिटी में तौबा बिकती है, प्रीस्ट के पास जाके पैसों से लेन देन करना पड़ता है, पहले तो जाके सारा राज खोलना पड़ता है, मैंने ये किया, कन्फेस करना कहते हैं इसको, ये किया वो किया, शर्मिंदा होते हैं। फिर वो कहता है अच्छा 1,000 वाली तौबा चाहिए, $500 वाली चाहिए, 7 वाली चाहिए, तो फिर वो कुछ उससे जाके दम दरूद करते होंगे तो उनकी तौबा माफ़ होती है। अल्लाह ताला कहते नहीं, इन्नी अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शाहरख से भी करीब हूँ। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए और तू मुझसे इस्तगफार करता रहे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ऐ इब्ने आदम अगर तेरे पास रुए ज़मीन के भर के बराबर गुनाह आ जाए और तू मुझे इस हाल में मिले कि तूने मेरे साथ शिरक ना किया, और तो मैं रुए ज़मीन के बराबर तुझे मग़फ़रत अता फरमाऊँगा। ये तिरमिज़ी का खुलासा। बाज़ लोग तो ऐसी हदीस को हदीसों को कोट करके कहते हैं देखा शिरक तो नहीं करते ना, तो क्या ये शिरक फिल हुक्म नहीं है? क्या ये अल्लाह की बड़ाई को बड़ाई समझते हुए गुनाह करते हैं? तो बहरहाल ये एक तवील टॉपिक है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें उन खुशकिस्मत लोगों में कर ले कि जो अपने पिछले गुनाहों को माफ़ करा के अपने लिए दुआओं के रास्ते खुलवा सकें और आइंदा गुनाहों से हमारा दिल ही चला जाए। एक बहुत ही प्यारी रिवायत इब्ने माजा और निसाई की कि वो शख्स खुशकिस्मत है जिसके नामे आमाल में कसरत से इस्तगफार पाया गया हो। गिनने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बग़ैर गिने अपने जब गुनाह बेहिसाब करते हैं तो फिर इस्तग़फ़ार भी बेहिसाब पड़े। अल्लाह के नबी 100 का जिक्र करते हैं, आप उस नियत से अगर 100 दफ़ा करें लेकिन शऊर के साथ करें, ये नहीं कि तस्बीह हाथ में इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार और साथ मनपसंद चीज़ें देख और सुन भी रहे और काम नहीं छोड़ रहे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मौजू से मुतल्लिक कोई बात है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, इस्तग़फ़ार की तौफीक भी अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए। हदीस में आता है कि अचानक मौत मोमिन के लिए तोहफा है और काफिर के लिए अजाब है। इसकी वजह में भी मुहद्दिसीन यही लिखते हैं कि काफिर को तौबा का मौका नहीं मिलता और मोमिन तो पहले ही अपना मामला नकद का रखता है। जी बिल्कुल सही कहा है इन्होंने ये बात कि अगर मौत अचानक जो आती है तो उसकी वजह है कि कभी भी इस नीयत से तौबा को डिले नहीं करना चाहिए कि चलो कर लेंगे जब मौत आएगी। आपको नहीं पता, और 3 सात का लफ्ज़ आता है हदीस में और कोई नहीं जानता कि वो सात कितनी लंबी है, इसके मुख्तलिफ एंगल हैं, इस पर बहुत लंबी बातचीत हुई है। इमाम इब्ने जौज़ी कहते हैं कि कितने ही यहूदी और नसरानी इस्लाम की तरफ माइल थे लेकिन शैतान ने उनको इस बात में डाले रखा और सोच लो अभी, और तहकीक कर लो अभी, और देख लो अभी वक्त पड़ा है, कि इतने में उनको मौत आ गई। तो शैतान तौबा भी हमसे दूर रखवाता है जैसे कि लोगों से इस्लाम दूर रखवाता है। इनका सवाल है कि किसी इंसान को अगर ये पता लग जाए कि अब मैं 3-4 महीने तक मर जाऊंगा, पहली बात ये है कि बड़ा खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको ये पता लग गया कि वो 3-4 महीने के बाद मरेगा। हमें तो ये नहीं पता हम अगले लम्हे होंगे कि नहीं, पहली बात है। डॉक्टर कह देते हैं कि अब इसका मर्ज इस हद का है, मिसाल है कैंसर का मरीज है, डॉक्टर कहते हैं 3 माह में मर जाएगा या 3 माह इसकी उम्र है, तो कैंसर नहीं वो हार्ट अटैक से मर जाए, वो रोड पार करते हुए मर जाए, मौत तो ज़रूरी नहीं कैंसर से आएगी ना, तो किसी को नहीं पता कब मरेगा कोई। अगर डॉक्टर्स कहते हैं, जो आपका सवाल है कि भाई 3 माह की मुद्दत है, तो अब अगर वो तौबा करे तो क्या वो मालम यो गरगिर में, इंशाल्लाह नहीं है। उसकी बीमारी ही उसके गुनाहों का कफ़ारा है अगर वो तौबा करे तो। मुबारक है वो लोग के जो पहले से थोड़ी थोड़ी खबरें सुन लेते हैं अपने जाने की और अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं। जी
डॉक्टर कहते हैं, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से जितनी है उतनी इंसान मतलब के या अपनी ज़िंदगी गुजारता है। मेरी नंद है, उनको 2 साल पहले की बात है कि उनको कैंसर डॉक्टर से डायग्नोस किया पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं है, मतलब कि तकरीबन अंदर का जो पूरा हिस्सा है वो ख़राब हो चुका है। तो उन्होंने ऑपरेशन किया, उनका बेटा उनके मैं दुबई में था, बड़ा बताया उनको कि उनसे कहे कि सूरह बकरा पढ़ा कर, वो पहले भी नमाजी प्रेस कर बहुत ही माशाल्लाह जिंदा है, तो वो डेली मतलब कि सूरह बकरा पढ़ रही है और अभी तक वो हयात है माशाल्लाह, अपना खाना सब कुछ खुद कर।
कोई मर नहीं सकता जब तक अपना रिस्क ना खा ले, ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला जब तक बंदे को तौबा की तौफीक दे, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।